नारायणी, क्योंकि वो नारायण की पत्नी है, और वृंदा क्योंकि तुलसी वृंदों में दल में पाए जाते हैं, इसलिए तुलसी का और एक नाम है वृंदा देवी। चंद्रशेखर कवि यहाँ कहते हैं, नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमः, नमो रे मैया नमो नारायणी। तो तुलसी देवी, वृंदा देवी, नारायणी का नमन कर रहे हैं। जाको दर्शे परशे अघनाशय महिमा वेद पुराणे वाखानी। केवल आपका दर्शन करने मात्र से या आपका स्पर्श करने से सारे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और आपकी महिमा का वर्णन वेदों में और पुराणों में किया हुआ है। जाको पत्र मंजरी कोमल श्रीपति चरण कमले लपटानी। आपके जो पत्ते हैं और कोमल मंजरियां हैं वो भगवान श्री नारायण के चरण कमलों में अर्पण किए हुए हैं। धन्य तुलसी मैया पूर्ण तप किए। धन्य हो आपका तुलसी महारानी, क्योंकि आपने प्राचीन काल से बहुत तपस्या की है श्री नारायण को आपके पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। श्री शालग्राम महापाटरानी, तुलसी देवी के पति शालिग्राम माने जाते हैं। शालिग्राम भी भगवान श्री नारायण या विष्णु का एक रूप है, और इस दिन पर शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी होता है। धूप दीप नैवेद्य आरती पुलन किए वरखा वरखाने। और जो कोई आपकी उपासना करता है थोड़े धूप लेकर या एक दीप लेकर या नैवेद्य आरती उतारता है तो आप उसके ऊपर कृपा की वर्षा बरसाते हैं। छप्पन भोग छत्रीस व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नमाही नहीं माने। आप अगर नाना प्रकार के छप्पन भोग स्वादिष्ट से स्वादिष्ट ऐश्वर्यशाली भोग तैयार करेंगे, छप्पन भोग और छत्रीस व्यंजन, लेकिन अगर उसमें तुलसी पत्ता नहीं हुआ तो उसे भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। शिव शुक नारद और ब्रह्मादि को धूरत फीरत महा मुनि ज्ञानी। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, जैसे कि शिव जी, शुकदेव गोस्वामी, देवर्षि नारद, वो सब आपकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। चंद्रशेखर मैया तेरा यश गावे भक्ति दान दीजिए महारानी। तो इस भजन के जो कवि हैं चंद्रशेखर, वो तुलसी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे तुलसी महारानी, कृपा करके मेरे ऊपर भक्ति का भेंट अर्पण कर दीजिए। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। दो दिन पहले शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा का पावन दिवस था, कार्तिक महीने का अंतिम दिवस। कार्तिक महीने के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं, और कार्तिक महीने में कितने सारे उत्सव होते हैं, और कार्तिक पूर्णिमा के दिवस पर भी कई चीजें हुई। भगवान श्री कृष्ण ने इस दिवस पर कंस का वध किया था, और इसी दिवस पर तुलसी महारानी भी प्रकट हुई। तुलसी महारानी भारतवर्ष में सभी के प्रिय हैं, चाहे कोई स्मार्ट हो, चाहे कोई वैष्णव हो, या किसी भी पंथ के क्यों न हो, सभी लोग तुलसी को मानते हैं। आप जगह जगह जहां भी जाएंगे देखेंगे लोगों के घर के सामने तुलसी महारानी अवश्य होंगे, और श्रद्धा से लोग तुलसी महारानी की पूजा करते हैं। आजकल ये तो कम हो चुका है, लेकिन कम से कम तुलसी महारानी बाहर तो विराजमान होती हैं, कम से कम तुलसी जी का दर्शन तो होता है। यह है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति कितनी अच्छी है, नाना प्रकार के उत्सव, और इसमें हमारे भौतिक संसार से शुद्ध होने के लिए कितने सारे मार्ग भगवान ने बतलाए हैं। वैसे तुलसी महारानी खास वैष्णवों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतवर्ष में सभी लोग तुलसी शालिग्राम का विवाह मनाते हैं। वैसे केवल ये कर्मकांड का एक उत्सव नहीं है, वैसे वैष्णव भी मनाते हैं। हमारे इस्कॉन के मंदिरों में भी कई जगह तुलसी विवाह करते हैं, क्योंकि तुलसी देवी का विवाह नारायण से हुआ था और फिर शालिग्राम के रूप में। तो इस कार्तिक पूर्णिमा के दिवस पर तुलसी जी प्रकट हुई थी। तुलसी जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। तुलसी कृष्ण प्रेयासी नमो नमः। हम हर रोज सुबह को प्रार्थना करते हैं कि तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रिय हैं, और इसलिए तुलसी महारानी वैष्णवों के लिए बहुत प्रिय है। वैसे आपने पढ़ा होगा, अनुभव किया होगा, जब किसी को बुखार होता है, गले में कोई तकलीफ होती है, तो तुलसी के पत्तों का काढ़ा वगैरह बना लेते हैं। कई बार हम सुनते हैं लोग कहते हैं तुलसी बहुत अच्छा है क्योंकि इससे इसमें कई औषधि गुण हैं। लेकिन वैष्णवों के लिए तुलसी आराध्य इसलिए नहीं बनती है कि ये बड़े औषध है। जिस प्रकार से गाय भगवान श्री कृष्ण की बहुत प्रिय है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च, गो ब्रह्मण्य हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जो ब्राह्मण वैष्णव होते हैं और जो गाय होते हैं, गो माता, दोनों भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। इसलिए वैष्णव गाय से प्रेम करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, क्योंकि गाय भगवान के लिए बहुत प्रिय है। तो उसी तरह से तुलसी देवी भी भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, और जो चीज भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है वो निश्चित रूप से भक्तों के लिए भी बहुत प्रिय होगा। इसलिए भगवान के भक्त खास करके तुलसी महारानी की आराधना सेवा उपासना करते हैं। और इस प्रकार से सारे शास्त्र में बताया हुआ है कि तुलसी महारानी की पूजा करने से कौन से लाभ मिल सकते हैं। वैसे गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहं भक्ति पहरतम अश्नामि प्रयतात्मनः, कि जो भी व्यक्ति मुझे एक पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पण करता है, अगर भक्ति भाव से मुझे अर्पण करता है तो मैं उसे बड़े आनंद से, प्रेम से स्वीकार करता हूं। तो ये पत्र कौन सा पत्र है? तुलसी का पत्र, खास करके तुलसी का पत्ता। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा कर सकता है, भक्ति कर सकता है, भले वो धनी न हो, भले वो शिक्षित न हो। गरीबी हमारे लिए कोई अड़चन नहीं है। अगर हमने लिखाई पढ़ाई सीखा नहीं है, फिर भी कोई अड़चन नहीं है। भगवान क्या चाहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ता, एक फूल, जल, ऐसे छोटे छोटे चीजें कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्राप्त नहीं कर सकता। गरीब से गरीब आदमी तुलसी का बीज बोकर अपने घर के सामने तुलसी की सेवा कर सकता है, भगवान को तुलसी का पत्ता और पानी अर्पण कर सकता है। हमें ऐसा नहीं लगता कि संसार में इतना कोई गरीब व्यक्ति हो जो कि भगवान को इतना भी नहीं अर्पण कर सकता है। कोई इतना गरीब? तो इसका मतलब है कि सभी लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो तुलसी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की सेवा बहुत आसानी से होती है। शास्त्र में बताया गया है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। बताया जाता है कि देवी देवताओं में से सर्वश्रेष्ठ जो उपासना है वो विष्णु की है। देवी देवताओं की पूजा से भी श्रेष्ठ विष्णु की आराधना है, क्योंकि विष्णु कोई देवी देवता नहीं है, वो तो साक्षात भगवान है। लेकिन विष्णु या कृष्ण के उपासना से भी श्रेष्ठ है उनके भक्तों की पूजा। तदिया नाम समर्चनम, तदिया नाम मतलब उनसे जो भी संबंधित है वो, उनके भक्त, उनका धाम, उनका नाम। उनके भक्तों में से तुलसी महारानी भी हैं, वो भी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, बल्कि वो हमें भक्ति प्रदान कर सकती हैं। तुलसी महारानी अगर हमारे ऊपर प्रसन्न हुई तो हमें कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकती हैं। तो इसलिए जब हम तुलसी महारानी की सेवा करते हैं, तुलसी महारानी से प्रेम करते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार से अगर हम किसी बच्चे से प्रेम करते हैं तो बच्चे के माता पिता भी हम पर खुश हो जाते हैं कि देखो हमारे बच्चे से कितना प्रेम करते हैं। तो उसी प्रकार से क्योंकि तुलसी महारानी भगवान की इतनी प्रिय हैं, अगर हमने तुलसी महारानी को बहुत प्रिय बना लिया तो भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। बहुत सरल बात है। इसलिए सारे वैष्णव खास करके तुलसी महारानी की उपासना अवश्य करते हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना कोई कठिन बात नहीं है। केवल एक तुलसी का पत्ता अर्पण करने से भगवान इतने ऋणी हो जाते हैं कि अपने आप को वो बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं उस भक्त के लिए। इसके इस सिलसिले में एक कथा आती है जो करीब 500 वर्ष पहले हुई थी। महाविष्णु ने अवतार लिया था और उस अवतार का नाम है अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य करीब करीब 550-600 साल पहले प्रकट हुए थे और उस समय उन्होंने देखा कि समाज में दशा बहुत बुरी थी लोगों की। जगह जगह पर लोग नास्तिक होते जा रहे थे और जो धर्म का पालन कर भी रहे थे वो तो केवल बाहरी रूप से, केवल दिखावे के लिए, और फिर ऐसा पालन कर रहे थे जिसमें कि सारे देवी देवताओं की उपासना करते थे, कोई दुर्गा की, कोई काली की, और नाना प्रकार के पशुओं की बलि चढ़ाना, और वैष्णव के प्रति बड़ा अत्याचार करते थे, उनकी निंदा करते थे। किसी को भी भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के प्रति रुचि नहीं थी। ये दशा देखकर अद्वैत आचार्य को बहुत दुख होता था। और वैष्णवों का गुण होता है कि वो पर दुख दुखी होते हैं, वो सहन नहीं कर सकते हैं कि दूसरे लोग संसार में दुखी हैं। तो अद्वैत आचार्य ने जब सारे समाज को देखा तो उनके मन में शास्त्रों का एक श्लोक स्मरण आया जिसमें बताया जाता है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेण वा विक्रीणते तुम आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। इसमें बताया जाता है कि तुलसी दल मात्रेण, तुलसी के पत्ते मात्र से, जलस्य चुलुकेण वा, आपके हाथों में थोड़ा सा जल और एक तुलसी का पत्ता अगर आपने श्री कृष्ण को दे दिया, अर्पण कर दिया भक्ति भाव से, तो फिर क्या करते हैं भगवान, विक्रीणते स्वम आत्मानम, अपने आप को बेच देते हैं। भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः, अपने भक्त को बेच देते अपने आप को, क्योंकि उनका नाम है भक्तवत्सल, भक्त उनके लिए बहुत प्रिय हैं। तो अद्वैत आचार्य ने जब ये श्लोक के बारे में सोचा तो उनके मन में विचार आया, इसका विश्लेषण करने लगे इस श्लोक का, तो सोचने लगे कि इसका मतलब है कि तुलसी के पत्ते में इतनी शक्ति है कि जब थोड़ा बहुत गंगा जल के साथ में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण किया जाता है बड़े भक्ति भाव से, प्रेम से, तो भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, इतने ऋणी बन जाते हैं अपने भक्त के, कि वो सोचने लगते हैं कि किस प्रकार से मैं ये ऋण को चुकाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ जाते हैं, सोचते सोचते उनको कोई उपाय नहीं मिलता। वो अपने सारे वैकुंठ धाम के बारे में सोचते हैं, वो तो षडैश्वर्य पूर्ण है, सारे ऐश्वर्य उनके पास है, तो अपने सारे ऐश्वर्यों के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को ऋण चुकाने में असमर्थ समझते हैं, और अंत में सोचते हैं कि अगर इस भक्त का ऋण मुझे चुकाना है तो मैं एक ही चीज उसे दे सकता हूं, और वह है मैं स्वयं अपने आप को बेच सकता हूं, और मेरे पास कुछ नहीं है इस भक्त को देने के लिए। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य ने सोचा कि भगवान को अगर बुलाना है तो तुलसी और गंगा जी का जल ये अर्पण करना होगा। क्योंकि अद्वैत आचार्य ने सोचा कि समाज की दशा इतनी बुरी है कि जब तक स्वयं भगवान यहाँ अवतार नहीं लेंगे तब तक यहाँ समाज की भलाई नहीं हो सकती, उद्धार नहीं हो सकता। यहाँ कोई साधारण संत भक्त कुछ नहीं कर सकता, स्वयं भगवान को ही आना पड़ेगा। तो अद्वैत आचार्य को इस श्लोक से बहुत प्रेरणा मिली, गंगा जी के पास गए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हुए गंगा जी के जल में तुलसी के मंजरी बड़े प्रेम से अर्पण करते गए और जोर जोर से भगवान श्री कृष्ण को पुकारते गए कि हे कृष्ण, आपको अवतार लेना ही होगा क्योंकि समाज की दशा इतनी बुरी है, अगर आप नहीं आएंगे तो समाज का क्या होगा। तो बड़े निस्सहाय ढंग से भक्ति भाव से अद्वैत आचार्य गंगा जी के तट पर बैठकर तुलसी मंजरी गंगा जल में अर्पण करके मंजरी और पत्ते अर्पण करते करते भगवान को पुकार रहे थे और भगवान ने अपने भक्त की पुकार सुनी। भगवान हमेशा अपने भक्त के पुकार सुनते हैं। जिस प्रकार से छोटा जो शिशु होता है जब वो अपनी माँ को पुकारता है तो माँ अवश्य दौड़ के आती है और जितने निस्सहाय भाव से बच्चा पुकारता है उतने ही जल्दी माँ दौड़ के आती है। और क्योंकि अद्वैत आचार्य ने बड़े प्रेम से पुकारा था निस्सहाय ढंग से, तो श्री कृष्ण ने उनकी पुकार सुन ली और फिर श्री कृष्ण ने अवतार लिया। कौन से रूप में आए भगवान? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब तुलसी का पत्ता भगवान को अर्पण किया जाता है तो भगवान कितने खुश हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि भगवान को पूजना है तो हमें बहुत धन चाहिए। हाँ, अगर हमारे पास धन है तो वो अवश्य देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम करोड़पति हैं और हम सोचें कि चलो भगवान तो केवल तुलसी का पत्ता मांगते हैं, एक तुलसी का पत्ता मांगकर छुट्टी हो जाती है हमारी, फिर हम सारा बैस हमारे करोड़ों रुपए जो है हमारे इंद्रिय भोग के लिए इस्तेमाल करेंगे। नहीं, इसका मतलब ये है कि करोड़पति को करोड़ों रुपए अर्पण करने चाहिए और जो गरीब से गरीब है उसको उसके पास जितना है उतना अर्पण करना चाहिए, लेकिन दोनों को तुलसी पत्ता अवश्य अर्पण करना चाहिए। और कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी के पास कुछ भी नहीं होगा तो तुलसी पत्ता तो है, जल तो है, वो तो अर्पण कर सकता है। इस प्रकार से तुलसी का पत्ता, तुलसी के मंजरी अर्पण करने से भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। दो रविवार पहले यहां गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया गया था और उस समय आपने सुना किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को एक विशाल रूप में विस्तारित किया और ब्रजवासियों ने जो गोवर्धन पर्वत के सामने भोग रखे थे वो सारे झट करके उन्होंने स्वीकार कर लिए, खा लिए सब कुछ। और ब्रजवासियों ने जब ये दृश्य देखा कि हमने इतने सारे व्यंजन बनाए हैं, नाना प्रकार के रोटी, चपाती, परोठे, पुलाव, चावल, सब्जियां, मिठाइयां, खीर, दूध के व्यंजन पदार्थ, फल इत्यादि, नमकीन, सब कुछ एक क्षण में गोवर्धन ने उसे सब खा लिया। और फिर बहुत आश्चर्यचकित होकर ब्रजवासी देखते गए और गोवर्धन ने कहा, अणयोर अणयोर, मतलब मुझे और चाहिए और चाहिए। तो गोवर्धन महाराज बड़े भूखे थे तो ब्रजवासियों ने और बहुत सारे ढेर सारा भोग लाया। पास पास के गांव से भी लोग लेकर आए, बर्तन बर्तन भर के बैलगाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में, जो भी गाड़ियां थी वो सब में लेकर आए और गोवर्धन जी को अर्पण किया। फिर से गोवर्धन ने उसे बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया और फिर कहने लगे, अनियोर अनियोर, और चाहिए और चाहिए। और ऐसे होता गया होता गया और ब्रजवासी सोचने लगे कि अब क्या करें, कहां से इतना सब लाएं, इनकी खाने की ताकत देखा जाए तो सारे दुनिया का सब कुछ भी अर्पण करें फिर भी ये संतुष्ट नहीं होंगे। फिर उनमें से एक बड़े बुद्धिमान ब्रजवासी थे, उन्होंने कहा कि अभी उनको पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए मेरे लिए एक उपाय है। तो क्या किया ब्रजवासियों ने, एक तुलसी का पत्ता अर्पण कर दिया, फिर अणयोर बंद हो गया, फिर गोवर्धन पूरी तरह से संतुष्ट हुए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तुलसी को कितना प्रेम करते हैं। तो एक बार जब नारद मुनि द्वारका में गए थे तो उन्होंने देखा अद्भुत चीज, बातचीत सब जगह, सभी लोग गोपियां जो द्वारका के रानियां हैं हैरान हो गई, सब लोग इधर उधर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान को शर्त हारे हैं और कृष्ण को बेचना है अभी। तो कृष्ण को बेचना है तो खरीदने की कीमत क्या हो सकती है? सभी लोग बेचैन, सभी लोग चिंतित, कृष्ण को खरीद कैसे सकते हैं? तो राके नारद मुनि ने उनको सुझाव दिया। जब वो तराजू में बैठे थे तो जितना भी आप सोना चांदी डालते तो श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण के सामने तो सारा दुनिया का सोना चांदी तो कुछ भी नहीं है। फिर एक तुलसी का पत्ता डाला तो सब ठीक हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण खरीदे गए केवल एक तुलसी के पत्ते से। तो वास्तव में जब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं विक्रीते समात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः, तो वास्तव में वो अपने आप को बेच डालते हैं। ये है भक्ति, भक्त और भगवान के बीच में ये प्रेम का संबंध है कि भगवान अपने आप को बेचने के लिए भी तैयार होते हैं। इस प्रकार से तुलसी महारानी को हमें भगवान के चरण कमलों में अर्पण करना चाहिए। तुलसी महारानी की महिमा को कई बार लोग समझते नहीं हैं। यहां तक कि जो साधु होते हैं, कभी कभी सन्यासी भी होते हैं, अगर वो भक्त नहीं हैं, तो शायद वो भी समझ नहीं पाए। श्रील प्रभुपाद जी बताया करते थे कि एक बार एक सन्यासी थे तो सन्यासी लेकिन नास्तिक थे, और भगवान में विश्वास नहीं करते थे लेकिन गहरे वस्त्र पहनकर इधर उधर प्रवचन करने जाते थे। लेकिन नास्तिक होने के बावजूद भी, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी बहुत सिद्धि हुई होगी, थोड़ी कला हुई होगी, तो बहुत सारे लोग उनके प्रति आकर्षित होते थे। और एक बार अपने प्रवचन में ये सन्यासी बोलने लगे कि अरे तुलसी जी की उपासना करने से क्या फायदा मिलेगा? तुलसी तो एक पौधा है, तुलसी से हमें क्या मिलेगा? हमें कम से कम कुछ टमाटर, गाजर कुछ डालेंगे, भिंडी कुछ डालेंगे, कम से कम कुछ खाने को मिलेगा, तुलसी से हमें क्या मिलेगा? तो प्रभुपाद जी इसकी कड़ी निंदा करने लगे। देखो ऐसे तथाकथित सन्यासी और साधु सारे समाज में कितना उत्पात पैदा करते हैं, इनकी वजह से कितना नुकसान होता है प्रजा के आध्यात्मिक प्रगति में, लोगों के हृदय में जो श्रद्धा है उसको नष्ट कर देते हैं, ऐसे लोग हमारे जो आध्यात्मिक वैदिक संस्कृति है उसको भी नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे लोग ये नहीं जानते कि भक्ति मार्ग में तुलसी महारानी का क्या महत्व है। तुलसी महारानी इतनी महान है कि स्वयं लक्ष्मी देवी भी तुलसी जी के पत्तों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपयोग करती हैं। वैकुंठ में श्रीमद् भागवत में चार कुमार अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि लक्ष्मी देवी जो कि वैकुंठ में हैं, तुलसी पत्ते और मंजरी लेकर नारायण के चरण कमलों में अर्पण करती हैं, और वो भी चाहती हैं कि उनको भी तुलसी महारानी के पत्तों की तरह, मंजरियों की तरह सौभाग्य कभी प्राप्त हो। थोड़ा बहुत ईर्ष्या भी करती हैं तुलसी देवी के प्रति। क्यों? इसके पीछे कारण है। अभी इस दुनिया के सारे बड़े से बड़े देवी देवता और पृथ्वी लोक के भी लोग, सभी लोग लक्ष्मी देवी की उपासना करते हैं। वो लक्ष्मी देवी की कृपा दृष्टि चाहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी देवी की कृपा दृष्टि हुई तो बहुत ऐश्वर्य हमें मिल जाएगा, धन मिल जाएगा। तो देवता भी, मनुष्य भी, सब लक्ष्मी देवी की उपासना करते हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी ज्यादा उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण लक्ष्मी देवी के प्रति इतना आसक्त नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी शक्ति से अनंत कोटि लक्ष्मी देवियों को वो निर्माण कर सकते हैं। लक्ष्मी देवी स्वयं भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पर विराजमान हैं। लेकिन इतना होते हुए भी वो तुलसी महारानी के पत्तों के बारे में सोचती हैं कि ये कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो हमेशा भगवान के चरण कमलों में स्थित रहते हैं, कभी हिलते नहीं हैं। लेकिन मुझे भगवान के वक्षस्थल से दूर जाना पड़ता है मेरे अनंत भक्तों को संतुष्ट करने के लिए। कभी वहां कुछ भक्त पुकार रहा है, हे लक्ष्मी माता आइए, तो उनको जाना पड़ता है। तो भगवान के वक्षस्थल को छोड़कर लक्ष्मी देवी कभी इधर जाती हैं, कभी उधर जाती हैं। लेकिन तुलसी जी के पत्ते जो है, मंजरियां हैं, वो भगवान श्री हरि के चरण कमलों को कभी छोड़ते नहीं है। इसलिए भगवान श्री हरि लक्ष्मी जी से ज्यादा तुलसी महारानी से प्रेम करते हैं, क्योंकि कम से कम उनके जो पत्ते हैं उनकी सेवा छोड़ते नहीं है, चरण कमलों में बने रहते हैं। तो इसी प्रकार से हमें भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अटल रूप से रहना चाहिए, भगवान की सेवा छोड़कर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। बल्कि जब हम मंदिर में आते हैं, सत्संग में आते हैं, अगर हमें कोई सेवा दी जाती है तो सेवा छोड़कर इधर उधर नहीं जाना चाहिए, हमें चंचल नहीं होना चाहिए। तुलसी के पत्तों से हमें प्रेरणा मिल सकती है कि जो सेवा हमें बताई जाती है वो सेवा शुरू से अंत तक हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भक्त ने बुलाया वहां चले गए, फिर वो छोड़कर वहां चले गए, तो वो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे हमारे ऊपर। लेकिन तुलसी के पत्तों की तरह हम रहें, भगवान के चरण कमलों में हम बिल्कुल भक्ति भाव से हम अटल रहेंगे तो भगवान की कृपा अवश्य हमारे ऊपर हो सकती है। तो तुलसी महारानी की महिमा का वर्णन सारे शास्त्रों में है। तुलसी महारानी जहां है सब कुछ वहां मंगलमय होता है। तुलसी महारानी का दर्शन करने मात्र से या स्पर्श करने मात्र से सारे हमारे दुख और बीमारियां दूर हो जाती हैं। तुलसी महारानी को प्रणाम करने से या उनको जल अर्पण करने से यमराज के दरबार के जाने का भय जो है वो दूर हो जाता है। और जो व्यक्ति तुलसी जी का कोई बीज बोता है तो वो भक्त बन सकता है, आज नहीं तो कल। और जो ऐसे तुलसी की सेवा करके तुलसी में जल अर्पण करता है, तुलसी के पत्तों को लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति भाव से अर्पण करता है, बहुत ही शीघ्र उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और बताया जाता है कि जो तुलसी का कंठी माला पहनते हैं केवल उसको देखने मात्र से लोग पावन हो जाते, लोगों का पाप नष्ट हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जब श्री कृष्ण की सेवा करता है तो फिर वो वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है। और शास्त्र में इतना कुछ तुलसी जी की महिमा के बारे में बताया है कि अगर वो लिस्ट पढ़ते जाएं तो शाम तक समय हो जाएगा। केवल एक उदाहरण दे रहे हैं, अगर तुलसी का एक पत्ता हमने श्री कृष्ण के चरण कमलों में खास करके कार्तिक महीने में अर्पण किया तो हमें 1 करोड़ गाय दान देने का फल मिलेगा। केवल एक तुलसी का पत्ता श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण करने से कार्तिक महीने में। ऐसे बहुत सारी चीजें बताई गई हैं पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, धम्म वैवर्त पुराण में, कई पुराणों में, श्रीमद् भागवत में भी। तो इस प्रकार से हमें तुलसी महारानी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। वैसे वैष्णवों की परंपरा में भी हम देखते हैं कि कई भक्त हुए हैं जिन्होंने तुलसी महारानी की पूजा की है और उन्होंने दूसरों को भी उपदेश दिया है तुलसी महारानी की पूजा करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं तुलसी महारानी के सामने बैठकर जाप करते थे। जहां भी चैतन्य महाप्रभु जाप करने बैठते उनके भक्त जल्दी से तुलसी महारानी को लाकर उनके पास में विराजते और चैतन्य महाप्रभु तुलसी महारानी का दर्शन करते हुए हरि नाम का जाप करते और फिर वो कहते कि अगर तुलसी महारानी से मैं अलग हो गया तो मुझे ऐसा लगता है जैसे एक मछली को होगा जब उसे पानी से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि तुलसी महारानी से अलग मैं नहीं रह सकता। इसका मतलब है कि भगवान का नाम का जप तुलसी महारानी के पास में बैठकर किया जाए तो इसमें बहुत शक्ति हमें मिलती है, आध्यात्मिक शक्ति। इसलिए मंदिर में जब हम जाप करते हैं तो तुलसी महारानी के पास में बैठकर सभी भक्त लोग जाप करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हरिदास ठाकुर वो भी ऐसे किया करते थे, उन्होंने अपने कुटिया के सामने तुलसी महारानी का पौधा बोया और फिर तुलसी जी की सेवा करते थे, जल अर्पण करते थे, प्रदक्षिणा करते थे, उनके सामने बैठकर वो जाप किया करते थे। और एक बार ऐसे हुआ कि जब हरिदास ठाकुर एक गांव में आए थे तो वहां के एक जमींदार जिनका नाम था रामचंद्र खान, उन्होंने जब देखा कि हरिदास ठाकुर बहुत प्रसिद्ध होते जा रहे हैं और लोग इनको बड़ा संत मान रहे हैं, तो उनको उनके हृदय में ईर्ष्या की भावना जागृत हुई कि हरिदास ठाकुर इतना प्रसिद्ध क्यों हो रहा है, ये हरिदास ठाकुर को मुझे बदनाम करना चाहिए। तो उस समय उसने एक तरकीब सोची, उसने एक वेश्या को बुलाया और कहा कि जाके हरिदास ठाकुर को बदनाम करो। तो वेश्या वहां पर चली गई और जब आई हरिदास ठाकुर के कुटिया में, वो अकेले बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अपनी माला पे कर रहे थे, तुलसी महारानी के सामने बैठकर। तो वेश्या जब आई तो वो संस्कृति उस समय थी कि वो वेश्या ने भी सबसे पहले तुलसी महारानी के सामने प्रणाम किया और हरिदास ठाकुर के सामने आके खड़ी हो गई। हरिदास ठाकुर तुरंत समझ गए कि इसे रामचंद्र खान ने भेजा है और क्यों भेजा है। तो उस समय हरिदास ठाकुर ने कहा कि थोड़ा समय बैठो, फिर मैं आऊंगा, अभी मेरा जाप समाप्त नहीं हुआ है, तो तुम बैठो इधर। तो बैठ गई और रात भर हरिदास ठाकुर जाप करते रहे, क्योंकि हरिदास ठाकुर दिन में अर्थात 24 घंटे में भगवान के 3,00,000 नाम लेते थे, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र के 192 माला रोज करते थे। हम लोग 16 माला करते करते हमें कष्ट होता है, लेकिन हरिदास ठाकुर 192 माला करते थे, मतलब उनको दिन के करीब करीब 20-21 घंटे लग जाते थे, और उसके बाद में फिर जो खाना पीना सोना है वो करते थे। तो हरिदास ठाकुर रात भर दिन भर जाप किया करते थे। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हरिदास ठाकुर जाप करते रहे, बड़े प्रेम से शुद्धता से उच्चारण करते करते रात बीत गई और वो वेश्या वहां बैठकर हरिदास ठाकुर का जाप सुनती रही, अपेक्षा करते रहे कि कब जाप समाप्त हो जाएगा, लेकिन जाप समाप्त हुआ ही नहीं। और फिर उजाला हो गया, फिर वो वेश्या चली गई, कहने लगी फिर मैं आऊंगी रात को। फिर दोबारा आई रात को, फिर वही घटना हुई, हरिदास ठाकुर ने कहा बैठो, मेरा जाप समाप्त नहीं हुआ। फिर से सारी रात बीत गई, वो वेश्या ने दूसरी बार तुलसी महारानी के सामने बैठकर हरिदास ठाकुर का जाप सुना। फिर तीसरी रात, और जब तीसरी रात समाप्त हो गई और सूर्योदय होना था, 3 रात हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त के मुखारविंद से हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण करके और तुलसी महारानी के सानिध्य में बैठकर इतना प्रभाव उस वेश्या के हृदय के ऊपर बैठा कि उसे अपने गलती का एहसास हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ और हरिदास ठाकुर को दंडवत किया उसने और क्षमा याचना करने लगी, कहने लगी कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं तो बहुत बड़ा अपराध किया है आपके प्रति। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मुझे मालूम है, मैं पहले ही चले जाने वाला था, मुझे पता चला कि रामचंद्र खान ने तुम्हें किस कारण यहां भेजा है, लेकिन केवल तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं यहां बैठा रहा, लेकिन अब तुम्हारा उद्धार हो गया है, तुम कृष्ण भक्त हो गई हो, इसलिए मैं यहां से चले जाऊंगा, तुम यहां पर रहना, और मेरा आदेश तुम्हारे लिए ये है, हमेशा तुम हर रोज सुबह शाम तुलसी जी की सेवा करना, तुलसी को जल अर्पण करना, तुलसी की प्रदक्षिणा करना, तुलसी को प्रणाम करना, तुलसी की प्रार्थना करना और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप निरंतर करते रहना। और फिर वो वेश्या ने अपना सर मुंडवा लिया और सादे कपड़े, सफेद कपड़े पहनकर उसी कुटिया में रहने लगी और हरिदास ठाकुर वहां से चले गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तुलसी महारानी के सामने जाप करने से कितना प्रभाव पड़ता है हृदय के ऊपर और हरिदास ठाकुर ने कितना महत्व दिया था तुलसी महारानी की सेवा करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से एक बार नारद मुनि जब एक स्थान से गुजर रहे थे जंगल से, तो उन्होंने देखा कि कई सारे पशु वहां पर गिरे हुए हैं जो कि आधे मरे हुए हैं और तड़प रहे हैं, और उनको देखकर बहुत दया हुई क्योंकि बहुत तड़प तड़प कर बड़े दुखी पीड़ित अवस्था में थे। तो नारद मुनि सोचने लगे कि कौन ऐसे इतना क्रूर व्यक्ति है जिसने कि इस प्रकार से पशुओं को मारा है, जान से भी नहीं मारा है और जीवित भी नहीं छोड़ा, आधा मारकर छोड़ा है। तो उसी समय झाड़ियों के पीछे से एक बहुत कुरूप व्यक्ति आया और उसके आंख लाल लाल थे, बड़े बड़े बाल थे और उसके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र थे। बड़े क्रोधित अवस्था में वह सामने आया कहने लगा कि मेरे शिकार को तुमने घबरा दिया, अभी वो सब मेरे शिकार भाग गए। तो नारद मुनि केवल शांत वहां खड़े रहे। पहले तो मृगारी, इसका नाम था मृग अरी, मृग मतलब पशु, अरी मतलब शत्रु, तो शत्रुओं का पशु मृगारी, पहले तो क्रोधित अवस्था में आया था, लेकिन जब नारद मुनि को देखा तुरंत उसके हृदय का परिवर्तन हो गया। ये होता है भगवान के भक्त का दर्शन करने का लाभ। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं वैष्णव के बारे में, एक वैष्णव का दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो सकता है। गंगा जी का स्पर्श करना पड़ता है, लेकिन वैष्णव का दर्शन करने से हृदय का परिवर्तन हो सकता है। तो नारद मुनि तो महान वैष्णव है, तो उनको देखकर तुरंत क्रोध शांत हो गया मृगारी का। और फिर नारद ने कहा कि अरे मृगारी, तुम इतने क्रूर क्यों हो, इन पशुओं को आधा क्यों मार रहे हो? तो मृगारी ने कहा कि मैंने यही मेरे पिताजी से सीखा है और उन्होंने उनके पिताजी से सीखा है, हमारी पारिवारिक परंपरा चलती आई है इतने सालों से, और मैं इसको बंद नहीं कर सकता क्योंकि हमारे परिवार का पालन पोषण करने का तरीका यही है। तो नारद मुनि ने कहा, क्या तुम जानते हो कि ऐसे पशुओं की हत्या करने से कितना पाप होगा? तो मृगारी बोलने लगा, पाप? ये क्या चीज है, पाप का मतलब क्या होता है? तो फिर नारद मुनि ने समझाया कि देखो पाप, ये सब करने से हम नरक में जाते हैं, पाप मतलब भगवान के नियमों का उल्लंघन। जब नारद मुनि ने बड़े विस्तार से मृगारी को समझाया तो मृगारी ने नारद मुनि के शरण ग्रहण किए और कहा कि जो आपकी आज्ञा, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं आदेश पालन करने के लिए तैयार हूं। तो नारद मुनि ने कहा, अपना घर छोड़ दो और यहां जंगल में आ जाओ, यहां छोटी सी कुटिया बनाओ अपने आप के लिए, और सबसे पहले थोड़े ऊंचाई पर तुलसी का बीज बोकर यहां तुलसी जी उगाओ, और फिर रोज तुलसी जी की सेवा करना, रोज जल अर्पण करना, रोज दीप अर्पण करना, रोज फूल इत्यादि अर्पण करना, प्रदक्षिणा करना, स्तुति करना तुलसी महारानी की, और तुलसी महारानी के सामने बैठकर तुम भगवान का नाम लेते रहना, हरि नाम का उच्चारण करते रहना। तो मृगारी ने यह आदेश का पालन उसके हृदय से किया। और थोड़े समय बाद जब नारद मुनि अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ में आ रहे थे तो उन्होंने अद्भुत दृश्य देखा कि ये मृगारी जो अभी साधु के वेश में था वो दंडवत करने जा रहा था, लेकिन अचानक आधे रास्ते में रुक गया और एक कपड़ा लेकर रास्ता साफ करने लगा। तो पर्वत मुनि ने पूछा नारद देव से, ये क्या कर रहा है, दंडवत करने जा रहा था, अचानक क्यों रुक गया बीच रास्ते में? तो नारद मुनि ने बताया कि वैसे उसने देखा कि रास्ते में थोड़ी चींटियां हैं और चींटियों को नहीं मारना चाहता था, इसलिए रुक गया है, चींटियों को हटा रहा है ताकि रास्ता साफ हो जाए और वो दंडवत कर सके। तो पर्वत मुनि ने कहा कि देखो, एक महान वैष्णव के गुण कितने महान होते हैं, केवल ऐसा मृगारी जैसा पापी व्यक्ति आज इतना बड़ा संत हो गया है कि वो एक चींटी को भी मारना नहीं चाहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई उदाहरण संतों ने जो उदाहरण जो उपदेश दिए हैं उनमें से हमेशा तुलसी जी तो रही हैं। जहां भी वैष्णव रहते हैं तुलसी महारानी को अवश्य वहां रहना चाहिए। तुलसी जीवी की सेवा रोज करने से हमें अनंत लाभ प्राप्त हो सकते हैं, श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हर एक घर में तुलसी महारानी होनी चाहिए। तुलसी महारानी की पूजा हमें सुबह शाम करनी चाहिए, कम से कम जल अर्पण करना चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए और फिर प्रणाम करना चाहिए और तुलसी महारानी की प्रत्येक प्रार्थना बोलनी चाहिए। और इससे अधिक अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। क्या कर सकते हैं, हमें एक घी का दीप अर्पण करना चाहिए, हो सके तो थोड़े फूल, बस इतना करने से सुबह शाम तुलसी महारानी प्रसन्न होंगी, हमारे ऊपर भक्ति प्रदान कर सकती हैं। तो हर एक घर में यह होना चाहिए। भगवान ने इतना इंतजाम किया हमारे लिए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, इतना आसान हमारे लिए बनाया है, अगर हमने इनका लाभ नहीं लिया तो क्या फायदा। जैसे मान लीजिए एक पाठशाला है, पाठशाला की परीक्षा के लिए जो अध्यापक हैं वो विद्यार्थियों को बहुत सारे तरीके बता रहे हैं पढ़ाई को आसान करने के लिए। वैसे परीक्षा में पास होना काफी कठिन है, लेकिन अध्यापक कई विशेष विशेष पद्धतियां बता रहे हैं कि देखो ऐसा करोगे, ये पढ़ोगे तो बहुत आसानी से पास हो जाओगे, लेकिन विद्यार्थी उसको देखते नहीं है तो परीक्षा में पास होना कठिन हो जाएगा। तो उसी प्रकार से भगवान ने हमें भक्ति मार्ग की परीक्षा में पास होने के लिए कितने सारे छोटे छोटे ऐसे महत्वपूर्ण मार्ग दिखलाए हैं, और इन पद्धतियों को स्वीकार करके हमारे लिए भक्ति बहुत आसान हो सकती है, भक्ति में बहुत तेजी से हम प्रगति कर सकते हैं। कौन ऐसा है जो दिन में एक बार या दो बार तुलसी जी को जल नहीं अर्पण कर सकता? तो आपके घर के आंगन में तुलसी जी रहीं, आप सुबह को उठकर पहले तुलसी को प्रणाम करें और तुलसी के सामने जाप करें, या कम से कम बाहर जाते समय प्रणाम करके जल अर्पण करके जाएं, तो इतना समय नहीं अवश्य सभी लोग निकाल पाएंगे, दो मिनट भी नहीं लगते। और अगर पांच मिनट निकालें तो आरती की जो छोटी सी दो मिनट पांच मिनट की आरती, कुछ नुकसान नहीं होता, और शाम को भी कीजिए। और फिर जब आप भोग बनाएंगे भगवान श्री कृष्ण को, भोग चढ़ाते समय तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पण कीजिए। तुलसी का पत्ता दो तीन दिन पुराना भी हो, सूखा हुआ भी हो, फिर भी कोई बात नहीं, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। बताया जाता है कि द्वादशी के दिन हमें तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए। द्वादशी के दिन जब हम भोग चढ़ाते हैं भगवान को, तो तुलसी के पत्ते जो हम इस्तेमाल करेंगे वो पहले दिन के पत्ते हो तो भी कोई बात नहीं, सूखे हुए हो तो भी कोई बात नहीं। और जब हम पत्ते हम तोड़ते हैं तो बड़े सावधानी से तोड़ना चाहिए, केवल हमारे दाहिने हाथ से तोड़ना चाहिए, और उन पत्तों को निकालना चाहिए जो कि जिनका जन्म पहले हुए। अभी अभी नए नए पत्तों को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जो पुराने पत्ते हैं उनको आसानी से हम निकाल सकते हैं। अगर नए नए पत्तों को निकालने जाएं, मंजरियों को निकालने जाएं, तो शायद तुलसी महारानी को दर्द हो सकता है। और पत्ते निकालते समय हमें नाखून का प्रयोग नहीं करना चाहिए, केवल अच्छे ढंग से एक हाथ से पकड़ के, और जब पत्ते हम निकाल लेते हैं तो तुलसी महारानी की हमें क्षमा याचना करनी चाहिए, एक प्रार्थना भी करनी चाहिए। इसके लिए भी कई मंत्र होते हैं, लेकिन मंत्रों को नहीं भी मालूम हमें तो फिर भी कोई परवाह नहीं, कम से कम मन में हम तुलसी के पत्ते उतारते समय भगवान से प्रार्थना कर सकते, तुलसी जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे तुलसी महारानी, आपका जन्म तो अमृत से हुआ है, और श्री केशव जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए हम आपके पत्ते लेना चाहते हैं उनके चरण कमलों में अर्पण करने के लिए, तो कृपया हमें अनुमति दीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम श्री हरि की सेवा कर सकें। तो ऐसी भावना से हम तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं और उन्हें भगवान के भोग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब पत्ते हम तोड़ लेते हैं उसके बाद में तुलसी जी से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपया आपको हमने दर्द पहुंचाया, आपके पत्ते वगैरह हमने उतारे, तो इसके लिए हमें आप क्षमा कीजिए। और इस प्रकार से तुलसी महारानी की सेवा हमें रोज करते रहना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा इस दिवस पर तुलसी महारानी इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। बताया जाता है कि बहुत साल पहले, वास्तव में ये एक पिछले ब्रह्मा जी के दिवस की बात है, पिछले कल्प की बात है, एक मनु थे जिनका नाम था उनके पुत्र का नाम था राज सावर्णी, वो भी बड़े महान वैष्णव, और इनके पुत्र का नाम था वृषध्वज। अब वृषध्वज वैष्णव नहीं निकला, वो केवल शिव जी की उपासना करता था, और इतना कट्टर भक्त था शिव जी का कि किसी भी दूसरे देवी देवता को नहीं मानता था, कृष्ण को भी नहीं, नारायण को नहीं, किसी देवी देवता को भी नहीं। काफी समय तक जो देवी देवता हैं वो उसे सहन करते रहे। शिव जी स्वयं उनके घर में आके रहने लगे, लेकिन अंत में जब देवताओं ने देखा कि ये वृषध्वज अनादर कर रहा है, यज्ञ का फल देवताओं को नहीं दे रहा है, तो सूर्य देव ने श्राप दिया वृषध्वज को कि तुम्हारे घर में जो भी ऐश्वर्य है वो सब नष्ट हो जाएगा। उस समय वृषध्वज ने जाके शिकायत की शिवजी से, देखो देखो सूर्यदेव ने क्या श्राप दिया मुझे, तो शिवजी बड़े क्रोधित हो गए, लेकिन उससे भगवान नारायण आए, उन्होंने सब शांत कर दिया, मध्यस्थ बने और सबको शांत किया, लेकिन वो शाप तो बना रहा। तो वृषध्वज के एक पुत्र हुए जिनका नाम था हर्षध्वज, और हर्षध्वज के दो पुत्र हुए, एक धर्मध्वज और दूसरे कुशध्वज। तो धर्मध्वज और उनके भाई कुशध्वज, ये दोनों भगवान श्री हरि के बड़े शुद्ध भक्त थे। धर्मध्वज ने मालिनी नाम के एक वैष्णवी से विवाह किया, और दोनों भाई प्रार्थना करते थे लक्ष्मी देवी से, श्री नारायण से, और लक्ष्मी देवी को बड़ी कृपा हुई इन दोनों भाइयों के ऊपर, और उन्होंने कहा कि मैं अपने आप के रूप में आपके कुल में मैं प्रकट हो जाऊंगी। और इसलिए धर्मध्वज और मालिनी देवी के पुत्री बनकर वो तुलसी महारानी के रूप में प्रकट हुए। जब तुलसी देवी प्रकट हुई कार्तिक पूर्णिमा के दिवस पर, तो इतना सुंदर रूप था उस बालिका का, इसलिए उसका नाम रखा गया तुलसी, जिसका सौंदर्य अतुल्य है। और तुलसी देवी के चरण कमलों पर कमल पुष्प की निशानी थी, और इस प्रकार से तुलसी महारानी का प्राकट्य इसी दिवस पर हुआ। आगे चल के तुलसी महारानी ने बहुत तपस्या की, और तपस्या करके अंत में भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त किया तुलसी देवी ने। वास्तव में ये तुलसी देवी गोलोक वृंदावन की एक गोपी हैं, जिनका नाम है वृंदा। वृंदा ये श्रीमती राधारानी की एक विस्तारित रूप है, और उनकी सेवा है कि वो राधा और कृष्ण की लीला में हमेशा सहायता करती हैं, जैसे अन्य गोपियां करती हैं। और वही वृंदा देवी जब ये भौतिक जगत में प्रकट होती हैं, तो वो तुलसी महारानी के रूप में आती हैं। और यही तुलसी महारानी क्योंकि ग्रुप्स में वृंद में आती हैं, इसलिए उनका नाम वृंदे है। तो इसलिए जो भजन हमने गाया पहले, उसमें ये था वृंदे महारानी तुलसी महारानी, तो वृंदा देवी और तुलसी महारानी एक ही हैं, और वो वृंदावन की रानी हैं। वृंदावन, वृंदा या तुलसी का वन, यह है वृंदावन, जिसमें राधा और कृष्ण लीला करते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कितने सारे लीलाएं किए, उन्होंने वहां रमण किया। तो वृंदावन की रानी वास्तव में है श्रीमती राधा रानी, क्योंकि तुलसी महारानी ने एक दिन ये सारा राज वृंदावन का भेंट कर दिया श्रीमती राधा रानी को। उसके बाद में राधा रानी का नाम हुआ वृंदावनेश्वरी, पर असलियत में पहले था किसका, ये वृंदा देवी का था, इसलिए इस जगह का नाम हुआ वृंदावन। इस दिवस पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जगह जगह पर तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी होता है। इस साल हम विवाह नहीं करेंगे, अगले साल करेंगे। वैसे ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को विवाह में जाना वर्जित है, लेकिन ये एक ऐसे विवाह है जिसमें सभी लोग आ सकते हैं, क्योंकि ये भगवान का विवाह है। तो अगले साल में तुलसी महारानी और शालिग्राम जी का विवाह उत्सव मनाएंगे, पूर्ण यज्ञ करेंगे, कोई कन्यादान करेंगे तुलसी जी का, और पूर्ण विवाह का संस्कार करेंगे। लेकिन आज के दिवस पर हम केवल तुलसी महारानी की सेवा करेंगे, प्रदक्षिणा करेंगे। तो अभी प्रवचन के तुरंत बाद जगह जगह तुलसी महारानी आएंगे, यहाँ नीचे भी हो सकता है, अगर यहाँ जगह कम पड़ गया तो नीचे भी, और आप अलग अलग ग्रुप में आप खड़े रह सकते हैं। फिर तुलसी कीर्तन होगा, तुलसी आरती होगी, और जब प्रदक्षिणा का समय आएगा तो आप सब तीन बार या चार बार आप प्रदक्षिणा कर सकते हैं। प्रदक्षिणा करने के बाद आप प्रणाम कीजिए, और प्रणाम करने के पहले आप जल अर्पण कीजिए तीन बार तुलसी महारानी को। और ऐसा न हो कि ये पहली बार और आखिरी बार हो, आपके घर में भी ये आप कर दीजिए। रोज इसको एक नियम बना लीजिए, अगर आपको भक्ति में प्रगति करना है तो ये एक अच्छा शॉर्टकट है। जल्दी से जिसको भगवान के धाम में जाना है, शुद्ध होना है, तुलसी जी की सेवा अवश्य वो कर सकेंगे। तो आज हमें तुलसी महारानी के चरण कमलों में प्रार्थना करना चाहिए कि उनकी कृपा दृष्टि हम पे बने रहे, ताकि हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम या भक्ति जागृत हो जाए। श्रीमती तुलसी महारानी की। श्री वृंदा देवी की, श्री श्री राधा गोकुलानंद की। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं तुलसी महारानी के बारे में। प्रश्न यह है कि माता जी लोग ने तुलसी के पत्ते निकाले तो चलता है? चलता है। दिन में निकालना अच्छा है, शाम में, सुबह, लेकिन द्वादशी को नहीं।
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा।
ऐसा एक मंत्र है कि तुलसी के बारे में, तुलसी जी के बारे में, नमस् तुलसी कल्याणी विष्णु प्रिय शुभे नमो मोक्ष प्रदे देवी नमस् संबत प्रदाय, ऐसा है मंत्र है। तो कौन से शास्त्र से?
अलग अलग शास्त्रों में है, अलग अलग पुराणों में है मंत्र। गौतमीय तंत्र में है, स्कंद पुराण में है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, पद्म पुराण में है, कितने सारे मंत्र हैं तुलसी महारानी के महिमा में। लेकिन पद्म पुराण में खास करके ऐसे मंत्र पाए जाते हैं। आज कई मंत्र हैं जिनको ज्यादा इसमें रुचि है अच्छी तरह से पूजा करने के लिए, वो मंत्रों का पाठ भी कर सकते हैं। मंत्रों के बारे में बाद में जिनको चाहिए उनको जानकारी दे सकते हैं। लेकिन मंत्र नहीं भी जाने तो कोई अड़चन नहीं है, भक्ति चाहिए। आप भक्ति से प्रार्थना कीजिए तुलसी महारानी से, फिर तुलसी महारानी प्रसन्न होंगी। अगर मंत्र आपको मालूम है तो अच्छे ढंग से आप बोल सकते हैं भक्ति भाव से। और कोई प्रश्न? तुलसी के किन अपराधों से हमें बचना चाहिए? तुलसी महारानी बड़ी कृपालु हैं। जब उनका दर्शन करने मात्र से इतना कुछ हो जाता है तो तुलसी महारानी इतने अपराध स्वीकार नहीं करती हैं। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत हो सावधान रहना चाहिए, खास करके उनका ठीक ढंग से देखभाल नहीं करना। और जब तुलसी महारानी है, जब बगल से जाते हैं और तुलसी महारानी को हिला कर जाते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन खास करके जो भगवान की सेवा में, खास करके अच्छा विग्रह की सेवा में जो हम अपराध करते हैं, जब हम तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करते हैं तो वो अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि तुलसी महारानी कितनी कृपालु हैं। सेवा अपराध से मुक्त होना है तो तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा हम कर सकते हैं। एक एक प्रदक्षिणा करके कितने सारे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये श्रद्धा की बात है। ये कौन सा वैज्ञानिक है जो इस बात को सिद्ध कर दिखाएगा? ये उनके परे है। लेकिन शास्त्र में बताया है कि केवल प्रदक्षिणा करने मात्र से ढेर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, एक बार तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करने से। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पाप करना, फिर प्रदक्षिणा करना, फिर पाप करना, प्रदक्षिणा करना, ऐसे नहीं। भक्ति करते करते ये एक भक्ति की विधि है कि हमें ऐसे तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए। आप में से कितने लोग अपने अपने घर में तुलसी महारानी की सेवा करेंगे आज से? रोज दूसरों को देखकर हाथ मत उठाइए, अपने अपने हृदय से आप जान लीजिए। इतना आसान तरीका है, देखिए भगवान ने इतने सारे शॉर्टकट दिए हैं, ये हम शॉर्टकट भी लेना नहीं चाहते हैं। बहुत आसान तरीका है। और कोई प्रश्न है किसी के? मंजरी, हाँ मंजरी भी निकालना है, मंजरी भी अर्पण कर सकते हैं। और जब ये मंजरी तुलसी के पत्ते चंदन के पेस्ट से, चंदन को घिस के जब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण किया जाता है तो यह सर्वश्रेष्ठ उपासना मानी जाती है। इससे कोई श्रेष्ठ उपासना नहीं है। तुलसी के पत्ते या मंजरी और चंदन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाना, और तुलसी केवल भगवान के चरण कमलों में लगाते हैं, कभी मुख पर नहीं लगाते हैं, और केवल कृष्ण या विष्णु तत्व को अर्पण किए जाते हैं तुलसी। कभी कभी एक ऐसे देखा जाता है कि कभी कभी कोई ऋषि हो, संत हो, जिसने कोई पंथ या कोई संस्था खोली है तो उसके समाधि के ऊपर तुलसी रखते हैं, ये एक बड़ा अपराध है। कोई जीवात्मा या ऋषि मुनि की बात तो दूर है, श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में भी तुलसी नहीं रखी जाती है, केवल विष्णु तत्व, भगवान श्री कृष्ण या विष्णु या नारायण। लेकिन श्रीमती राधा रानी के हाथ में तुलसी का माला अवश्य दे सकते हैं, तुलसी का हार, तुलसी के पत्तों का हार, क्योंकि वो तुलसी राधा रानी वो हार लेकर कृष्ण को अर्पण करती है। लेकिन राधा रानी के चरण कमलों में नहीं, केवल भगवान के चरण कमलों में तुलसी देवी को अर्पण करना चाहिए। देखिए कितना आसान है भगवान को संतुष्ट करना, कठिन नहीं है। हाँ विवाह हुआ था ये बहुत लंबी कथा है, स्कंद पुराण में है, जानबूझ के हमने दोनों कथाएं नहीं बोले। शंखचूड़ नाम का असुर था जो सुदामा ग्वालबाल का अवतार था, लेकिन वो कथा आज नहीं बोलेंगे, बहुत लंबा है। और फिर वो आधे कथा नहीं छोड़ सकते, फिर शालिग्राम की कथा आएगी, गंदकी नदी की कथा आएगी, तुलसी का रूप ऐसे कैसे आया, वो अगले साल में बोलेंगे। तो अगले साल आप सुनना चाहते हैं तो तुलसी विवाह का जो कार्यक्रम होगा उसमें भाग लीजिए, उसमें अगले बार हम सुनाएंगे।
आपने अभी बताया कि अगर हम भगवान को 56 भोग भी अगर चढ़ाएंगे तो तुलसी के पत्ते बगैर वो उसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन जो आपने गोवर्धन लीला के बारे में बताया, जो कि गोवर्धन जो भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान ने और गोवर्धन पर्वत में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब आपने बोला कि वो गोवर्धन लीला समाप्त हुई तब गोवर्धन उत्सव मनाया गया, तब ब्रजवासी जो है वो उधर अनेक भोग गोवर्धन को अर्पण किए और वो गोवर्धन ने स्वीकार किया उसका, और बाद में आने और ऐसा कहा, और भी अगर और भी जब ब्रजवासी और भोग लेके आए तब भी गोवर्धन ने यही कहा कि आनी और, तो बाद में ब्रजवासी सोचने लगे कि अभी कितना भी अगर गोवर्धन को हम देंगे तो कम पड़ जाएगा, तब उन्होंने जब उनको एक तुलसी का पत्ता दिया तब उनका
भूख संतुष्ट हो गया।
भूख संतुष्ट, तो आपने कहा कि जैसे कि हम 56 भोग भगवान को चढ़ाते हैं, अगर उसने तुलसी का पत्ता नहीं है तब तक वो भगवान उसका स्वीकार नहीं करते, तो ये कैसे क्या होता है कि जो कि भगवान ने वो
ब्रजवासियों ने क्या तुलसी पत्ता नहीं अर्पण किया था भोग के समय, ये प्रश्न है ना। अभी स्वयं भगवान कृष्ण वहां पर थे तो उन्होंने ब्रजवासियों को बोला था कि जो भी बनाया है अर्पण करो, अब शायद नहीं हुआ होगा तुलसी का पत्ता उसमें, लेकिन भगवान ने स्वीकार किया था क्योंकि ब्रजवासी है, भगवान के निज जन है, इसलिए उन्होंने स्वीकार कर दिया होगा। और अंत में जब देखा कि और कोई चारा नहीं है तो किसी ने सोचा हाँ तुलसी अर्पण करो, फिर संतुष्ट हो गए। अब उन्होंने तुलसी के पत्ते रखे थे नहीं रखे थे वो हमें तो नहीं पता, लेकिन खैर जो भी है, जब एक तुलसी पत्ता अंत में रखा गया तो पूरी तरह से वो संतुष्ट हुए। तुलसी जी का विवाह भगवान कृष्ण के विग्रह से किया जाता है, क्या यह शास्त्रीय माना जाता है? भगवान श्री कृष्ण के विग्रह मतलब शालिग्राम शिला से किया जाता है, क्योंकि तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से हुआ था। तुलसी महारानी ने श्राप दिया, फिर भगवान पत्थर बन गए, वो भी शिला बन गए, और फिर विष्णु ने तुलसी जी को श्राप दिया, फिर वो पौधे के रूप में आ गई, प्लांट के रूप में आ गई। तो यह भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान हमें सेवा करने का मौका देना चाहते हैं, और तुलसी जी का यहाँ आगमन करने का कारण एक ही है कि वो अपने आप को श्री कृष्ण के चरण कमल में सेवा के लिए उपयोग किए जाने के लिए, ताकि हम सब उनका उपयोग उनकी भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए कर सकें, इसलिए आए। तो तुलसी जी का विवाह वैसे शालिग्राम शिला से किया जाता है। तुलसी पूजा करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.